विवेचना। जब भी दुनिया को अपने कदमों से नापने वाले पुराने अन्वेषकों की बात होती है तो वर्नियर, टेवर्नियर, मार्को पोलो और इब्न बतूता जैसे घुमक्कड़ों का नाम जहन में आता है, लेकिन पंडित नैन सिंह रावत का नाम कितने लोगों ने सुना होगा।
बैसा खुला
कुमाऊं की जोहार घाटी के गरीब परिवार में पैदा हुए नैन सिंह रावत ने उस दौर में हिमालय पार करके तिब्बत की अबोझ धरती को अपने कदमों से नापा, जब न घोड़ा गाड़ी थी, न सड़कें और न हवाई जहाज। 1863-64 में तिब्बत के ल्हासा से लेकर ठोक जालुंग और 1873-74 में उससे भी आगे यारकन तक का सफर करके पूरे इलाके के भूगोल को उन्होंने माप डाला।
दरअसल कभी कभी हम किसी आदमी का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि वो कहाँ पहुंचा। जैसे नैन सिंह सर्वे के इतिहास में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सर्वोच्च सम्मान को पाने वाला व्यक्ति था, नंबर वन। नंबर टू, पेरिस की ज्योग्राफिकल सोसाइटी का स्वर्ण पदक उसको मिला, सर्वे ऑफ इंडिया का स्वर्ण पदक उसको मिला, CIE का तमगा उसको मिला, जमीन की ग्रांट उसको मिली, ये सब मिला उसको। लेकिन ये उसके जीवन का क्लाइमेक्स था। सवाल यह है कि वो कहाँ से चला था। अगर ये हम पीछे को देखते हैं तो नैन सिंह की बहुत ही हम्बल और बहुत ही कठिन बिगिनिंग थी। उसका बचपन जबरदस्त कठिनाई से, कठिनाई तो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा थी किसी के भी बचपन में, लेकिन नैन सिंह का बचपन अतिरिक्त रूप से जो है कठिन था। और जिसको कहेंगे कि जिस दौर में उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा था, उस दौर में वो एक तरीके से पारिवारिक और बिरादरी से टॉर्चर किया जा रहा था, और वहां से निकल के वो कैसे खिला, ये नैन सिंह को आगे बनाता है।
हिमालयी इतिहास, भूगोल, पर्यावरण और समाज के जानकार डॉक्टर शेखर पाठक उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने पंडित नैन सिंह रावत की मृत्यु के लगभग 100 साल बाद 1972-73 में उनके योगदान पर अध्ययन शुरू किया और इधर उधर खोई उनकी यात्रा डायरियों को खोजना शुरू किया। इन डायरियों में बरती गई भाषा को समझने और विश्लेषित करने का काम किया कुमाऊं विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा भट्ट ने। सन 2006 में दोनों ने नैन सिंह के काम को संकलित करके 600 पन्ने की किताब छापी एशिया की पीठ पर। भारत में 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया का साम्राज्य स्थापित हो गया था और अंग्रेजों ने पूरब का सर्वे शुरू कर दिया था। देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी और अब अंग्रेजों की नजर हिमालय के पार थी।
सर्वे ऑफ इंडिया का जो ग्रेट आर्क करके जो सर्वे थी, वह ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी जिसको कहा जाता है, वह हिमालय के बाद तिब्बत में जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत में किसी भी फिरंग का आना मना था और भारतीय लोगों को सिर्फ उसी जगह जाने की आज़ादी थी जहां उनका इमीडिएट मार्केट होता था, तिब्बत का मार्ट होता था। तो इस तरीके से उनको तिब्बत के लिए ऐसे चेहरों की जरूरत थी जिनके चेहरे मंगोलोइड हों और जिनके होठों पर तिब्बती भाषा हो।
ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हो रहे व्यापक सर्वे में काम करने के लिए श्लागेंट वाइट बंधुओं को जर्मनी से हिंदुस्तान भेजा गया था। नैन सिंह ने कुली बनकर उनके साथ काम करना शुरू कर दिया।
श्लागेंट वाइट ब्रदर्स उनसे बहुत जबरदस्त तरीके से खुश हुए कि इतनी जल्दी ये सीख जाता है। जब नैन सिंह श्लागेंट वाइट ब्रदर्स के साथ गए तो उन्होंने ये तय कर लिया कि इस यात्रा के बाद वो उसको इंग्लैंड ले जाएंगे। अब नैन सिंह के लिए वो बड़े डिलेमा में था, क्या करूं, क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैं समंदर पार करके वहां चला जाऊं तो क्या पता जाति से मुझे बाहर निकाल दिया जाए।
नैन सिंह रावत ने इस दुविधा को अपनी डायरी में दर्ज किया है, लगभग 150 साल पहले देवनागरी लिपि में मगर हिंदुस्तानी जबान में लिखी गई इस डायरी की भाषा गौर करने लायक है।
एक रोज साहब ने मुझसे कहा कि तुझे 100 रुपया माहवारी तनख्वाह देंगे और 1000 रुपया पेशगी तनख्वाह घर के गुजारे के लिए देते हैं। तुम हमारे इंग्लिस्तान को सिर्फ 2 वर्ष के लिए आओ, बाद तीसरे साल वापस जाओगे। मैंने विलायत जाने से इनकार की। साहब भी नहीं मानता था कि तुमको आना ही होगा। फिर मैंने दिल में सोचा कि अगर मैं साहब का कहा नहीं मानता हूं तो साहब नाराज होते हैं, बेहतर है जो भी हो विलायत हुआ हूं। माणी ने कहा, अगर तू इंग्लैंड को जाता है तो तू हमारे तरफ से अभी मर गया, तेरे लिए छाक अभी छोड़ते हैं।
नैन सिंह रावत इंग्लैंड तो नहीं गए, पर यूरोपीय अफसरों के संपर्क में आने के कारण उन्हें सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई। उनकी ट्रांस हिमालय यात्राओं की ये शुरुआत थी। शायद तिब्बत और यारकंद में हासिल किए गए उनके अनुभव सरकारी रिपोर्टों और अकादमिक किताबों में ही छिपे रह जाते, मगर डॉक्टर शेखर पाठक ने जगह जगह से नैन सिंह के हाथ की लिखी डायरियों को खोजा। नैनीताल के अध्यापक कवींद्र शेखर उप्रेती के पास एक डायरी मिल गई।
नैनीताल में एक हमारे बहुत परमप्रिय बुजुर्ग थे जिनका नाम था कविंद्र शेखर उप्रेती जी, जो प्रिंसिपल रहे थे मुनस्यारी में भी और उधर आपके नीतिमाणा के इलाके में भी। उन्होंने कहा कि मेरे पास नैन सिंह की डायरियां हैं, तो देखने के लिए गए तो बड़े पुराने बंडल में पड़े हुए थे वो। अब संकट ये था कि उनको टच करें तो वो टूट पुरानी, यानी कि करीबन 150 साल पुराने कागज मान सकते हैं आप, 1870-80 के बीच में लिखे गए होंगे वो। तो कमल जोशी हमारे दिवंगत साथी जो हमारे पहाड़ के फोटो एडिटर भी रहे, वो उस जमाने में नैनीताल में PhD कर रहे थे केमिस्ट्री में, उनके पास कैमरा था, उनके पास एक अपनी मिनी लेबोरेटरी थी और मंडलीताल में रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं सब फोटो खींच के उनके प्रिंट बना के तुमको दे दूंगा। एक दिन हम सब गए और हमने करीबन 150 या 125 जितने होंगे वो फोटो खींचे। अगले दिन उसने बड़े बड़े प्रिंट बना के हमको दे दिए।
इन्हीं डायरियों से पता चला कि उन्होंने 1854 से 1874 के बीच 5 लंबी लंबी यात्राएं की और अपने अनुभवों को दर्ज किया। उन्हें खुद की पहचान छिपाकर तिब्बत में जाना था, तिब्बती शासकों और चोर डाकुओं से अपनी हिफाजत भी करनी थी और साथ ही बिना साजो सामान के तिब्बती पठार को मापना भी था। पर इन अभियानों पर निकलने से पहले सर्वे ऑफ इंडिया में नैन सिंह और उनके भाई मानी सिंह को सर्वेयर की ट्रेनिंग दी गई।
चढ़ाई में उनके कदमों की दूरी, उतार में उनके कदमों की दूरी निकाली गई, दोनों का मीन निकाला गया, तो नैन सिंह का जो एक स्टेप था वो 32.5 इंच का बनता था। नैन सिंह जब 2000 कदम चल लेगा तो 1 मील बनता था और कदम से आपने मील बनाने थे। नंबर वन। नंबर टू जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि नैन सिंह के लिए एक माला बनाई गई थी, क्योंकि उसको डिस्गाइज में बुद्धिस्ट रूप भी लेना था लामा का, तो उसको जो एक रोजरी दी गई थी वो 108 दानों के बदले 100 दानों की थी, यानी कि 100 कदम गिनेंगे तो एक बार की माला का चक्र पूरा हो जाएगा। माला का चक्र 20 बार पूरा होगा तो 2000 कदम हो जाएंगे, 2000 कदम हो जाएंगे तो नैन सिंह का 1 माइल हो जाएगा। एक आदमी जो 1000 माइल चल रहा हो, 1200 माइल चल रहा हो, इसलिए जब पंडितों पर फिल्म बनी तो उसको टाइटल उसमें दिया गया था 1 मिलियन स्टेप्स।
मगर फिर भी तिब्बत में नैन सिंह का सामना डाकुओं से हो ही गया।
रास्ता नापने बाबत समझाकर नौकर को आगे लद्दाखियों के हमराह भेज दिया। इतिफाकन थार कहीं यामडोकछो झील के किनारे गारतगरों की डेरा जो पड़ी थी, एक ने आकर मेरे घोड़े की बागडोर पकड़कर मुझसे कहने लगा कि घोड़े से उतरो देवयोग से। इतने में मोहम्मद शाह मुसलमान सन 57 का बागी, जो लद्दाखियों के साथ ल्यासा भागे जाता था, मेरे पीछे से पहुंच गया। वो शख्स बोध की बोली नहीं जानता था। उसने मुझसे पूछा कि इस शख्स ने तुम्हारे घोड़े की लगाम क्यों पकड़ रखी है। मैंने कहा कि ये गारतगर है, मुझको लूटने को तैयार है। मोहम्मद शाह ने चिल्लाकर गारतगर की ओर कमची उठाई तो ही उस झेकपा ने मेरे घोड़े की लगाम को तो छोड़ दिया, मगर तलवार मियाने से निकालकर उसके मारने को दौड़ा। मैंने फुर्सत चुपाई, घोड़े को कोड़ा मारकर चल दिया। मेरे पीछे पीछे मोहम्मद भी दौड़ आया। इतने में बहुत से गारतगर लोग दिखाई दिए, बहुत से कुत्ते बड़े बड़े हमारे पीछे छोड़ दिए, बाद दो फायर बंदूक भी किए।
उन दिनों हिंदुस्तानियों को सिर्फ व्यापार मंडियों तक जाने की इजाजत थी और एक बार तिब्बत के अफसरों को नैन सिंह रावत के असली मकसद पर शक हो गया। नैन सिंह को ठोक जालुंग तक जाना था पर अफसरों ने बीच में ही रोक दिया।
उसने मुझसे पूछा कि तुम कहां तक क्या काम में जाते हो। मैंने अपने तई व्यापार के वास्ते गारतोक तक जाने को जाहिर किया। तब वो बोला, हमने सुना है कि गुजश्ते अगले साल में तुम अंग्रेज बहादुर की ओर से सफीर होकर ल्हासा के तमाम नक्शा बनाकर सरकार अंग्रेज के पास भेजा है, न मालूम अब के किस तरफ का भेद ले जाने को आए हो। ये बात तुमको हरगिज नहीं चाहिए। यद्यपि मैं तो देवजुंग के कारोबार से अलग हूँ, लेकिन माणी वगैरह तुम मेरे मालिक कुकेर जोमपन और मेरे दोस्त हो, इसलिए अपनायत की राह से मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अगर तुम अबके भी अपने जाने की मामूली जगह गारतोक से अनत जाने का विचार करोगे तो अवश्य तुम हमारे सरकार के गजब में फंस जाओगे। तब मैंने अपने तई ल्हासा तक पहुँचने बाबत बिल्कुल इनकार किया और उसे एक दिया सलाई देकर रुखसत किया, परंतु दिल में मेरा बड़ा संदेह हो गया कि मेरे ल्हासा से आने का खबर शायद यहाँ के हाकिमों के पास हो गया हो, तो ना मालूम मुझसे क्या सलूक करें।
नैन सिंह पूरे 100 दिन ल्हासा में रहे, तो ल्हासा की मठ, लासा के लोग, लासा की गलियां, लासा के कुत्ते, लासा के आगंतुक तीर्थयात्री, दलाई लामा, छोटा सा दलाई लामा था उसमें, उससे मिलने के लिए वो गए और वो सब उन्होंने अपनी डायरी में छोड़ा है। दरअसल उनकी डायरी के जिन हिस्सों को अंग्रेजी में रिपोर्ट बनाया गया उनमें ये सब अनुभव एक तरीके से कम कर दिया अंग्रेजों ने। उन्होंने सर्वे वाला पक्ष, ज्योग्राफी वाला पक्ष याद रखा, जो उन्होंने सोसाइटी, कल्चर, भाषाएं, तमाम चीजें पकड़ी वो उनकी डायरी से ही हम पकड़ पाते हैं।
नैन सिंह रावत ने अपने कदमों को गिनकर, बौद्धों के मणिचक्र के चक्करों को गिनकर, घोड़े की टापों को गिनकर तिब्बत को नापा। उन्होंने वहां के समाज का भी गहरा अध्ययन किया। तिब्बत में उन्होंने देखा कि लोग बौद्ध लामाओं पर इतनी श्रद्धा रखते हैं कि उनके मल मूत्र तक को प्रसाद मानते हैं।
तिब्बती और चीनी लोग इन लामाओं को साक्षात परमेश्वर करके मानते हैं। उसके करामात का निश्चय यहाँ तक है कि लामाओं के पेशाब और थूक और उच्छिष्ट खाने को प्रसाद जानकर खा लेते हैं। चुनाचे लामा के पेशाब के साथ कई मसाले मिलाकर छया परिलू यानी पेशाब की गोली, रंगीन गोलियां बनाई जाती हैं। इसी प्रकार लामा के उच्छियु भोजन के साथ कई मसाले, आगेज, रिलू वगैरह रंग बिरंगी गोलियां बनाकर लोगों में बांट दी जाती हैं। लोग बड़ी श्रद्धा से उन गोलियों को बिना चबाए निकल जाते हैं। कहते हैं कि उन गोलियों को खाने से इस लोक में तो किसी प्रकार का रोग नहीं होता, मरने पर भी मोक्ष पदार्थ मिलता है।
डॉक्टर शेखर पाठक बताते हैं कि किस तरह नैन सिंह की समझदार नजर सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी जाती थी।
जो उसकी चार बड़ी यात्राएं थी उनमें से दूसरी यात्रा थोक जालूंगी थी, जहां वो सोने की खान, आपके नमक की खान और अवरक की खानों को देखने गया। और तो और सोने की खानों में काम करने वाले मजदूरों के सामूहिक गीतों को भी उसने सुना और कहा कि इस तरीके से वो लोग गीत गाते हैं और सोना उसमें से निकलता है। इसी तरीके से उसने वहां के अलग अलग जगह के उनको समूह मिले मंगोलोइड, उनके बॉडी, उनके शरीर रचना, इनके बारे में वो जिक्र करता है। यारकंते की डायरी में वह बहुविवाह की प्रथा की जिक्र करता है कि यहाँ के जो एक दो जोरू से काम चलाने वाले खसम यहाँ बहुत कम है, ये उसने एक जगह लिखा हुआ है। यहाँ तो बहुत सारी शादियां करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं करके भी वो मजाक करता है।
सुना है कि यारकंद में मर्दों के निस्बत औरतें ज्यादा हैं, हुस्न गोरे इंग्लैंडी औरतों के समान है। इन यारकंदियों में ये एक दस्तूर निहायत खराब है कि ख्वाह 8 बरस की हो, ख्वाह 9-10 बरस की हो, लड़की के साथ निकाह कर लेते। इस बात पर लड़की के माँ बाप भी राजी हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसी कम उम्र की लड़कियां मर्द के सुहब्बत से अक्सर मर गईं तो भी ये लोग बाज नहीं आते। जितनी कम उम्र की लड़की से निकाह करते हैं उतना ही अपने को सादतमंद और अपना गिजा करके मानते हैं। पर तमाशा ये है कि अगर उस लड़की या औरत के साथ ता उम्र निभ जाता तो बेहतर था। निकाह किए के दिन से महीना या 2 महीना, हद 1 वर्ष बाद उसको तलाक देकर दूसरे के साथ निकाह कर लेते हैं। यहाँ तक कि एक आदमी अपने उम्र भर कम से कम 50-60 निकाह कर लेता, जो कोई जितना ज्यादा निकाह करता उतना ही वो बड़ा इज्जतदार कहलाता। अपने उम्र भर एक औरत और एक खशम पर सबर करने वाले सैकड़े में कोई एक निकलेगा।
नैन सिंह की डायरी से पता चलता है कि 150 साल पहले यारकंद में किस किस देश, नस्ल और जाति के लोग आते थे और वहाँ का खान पान कैसा था।
यारकंद में सब देश के आदमी रहते, चुनाचे चीन, कुचार, तुरफान, अक्सू, रोमची, कारा शहर, खोता, बुखारी, वदकशानी, कंदारी, वल्खी, काबुली, अफगानी, चतराली, कंजूती, वलती, काश्मीरी, लद्दाखी, हिंदुस्तानी, समरकंदी, ताशकंदी, अनजानी, तुंगानी। घोड़ा, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी सब जानवरों का गोश्त खाते हैं। जंगली जानवरों में शेर, भालू, बारा सिंह, हिरन वगैरह खा लेते हैं। सिर्फ सुअर, कुत्ता, गधे का शिकार नहीं खाते, पर खुफिया तौर पर गधे को मारकर बाजार में बेच डालते हैं। इस बात पर काजी ने कईयों को सजा भी दिया।
जल्दी ही इस जाबाज घुमक्कड़ का डंका हिंदुस्तान से इंग्लैंड तक बजने लगा। हालात ये थे कि एक बार नैन सिंह की मृत्यु की अफवाह उड़ी और तभी महान अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की भी मृत्यु हुई, पर अखबारों ने नैन सिंह को अपने पन्नों पर ज्यादा जगह दी।
टाइम अखबार की सन 1882 के किसी अंक में एक न्यूज छपी, ग्रेट पंडित डेड, और उसमें पूरी खबर थी और पूरे एक तरीके से जो उसको जानते थे, जो रिटायर्ड होकर अल्मोड़े से वहां गए थे, वो सब शोक से विह्वल हो गए। तो एडमंड स्मिथ करके जो अल्मोड़ा में एजुकेशन का अफसर था, नैन सिंह का पहला एम्प्लॉयर था, वो बहुत भावुक हो गया। उसने एक 4 पन्ने लंबी ऑबिचुअरी जो है पंडित नैन सिंह रावत पर लिखी। मजेदार बात यह है कि 1882 में जो एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो व्यक्ति मरा था उसका नाम था चार्ल्स डार्विन। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की जर्नल में जो ऑबिचुअरी छपी थी वो चार्ल्स डार्विन की आधे पन्ने की ऑबिचुअरी छपी थी और पंडित नैन सिंह रावत की 4 पन्ने की ऑबिचुअरी छपी थी। उससे उसकी महत्ता का एक तरीके से अंदाज आता है। चार्ल्स डार्विन कोई मामूली हस्ती नहीं थी।
पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों ने अपने इस अन्वेषक को कितनी इज्जत बख्शी। देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया के दफ्तर में उनकी एक मूर्ति जरूर लगी है, पर अगर 21 अक्टूबर 2017 को नैन सिंह रावत का जन्मदिन मनाने के लिए गूगल उनकी याद में डूडल नहीं बनाता तो बहुत से लोगों के लिए ये नाम गुमनाम ही रह जाता।